साहित्य कला मंच के तत्वावधान में आयोजित विराट कवि सम्मेलन के कुछ महत्वपूर्ण अंश इस प्री रिकॉर्डेड कैसेट में संजोए गए हैं। आपका भरपूर मनोरंजन हो इस बात का हमने विशेष ध्यान रखा है। हमारे देश के कई जाने माने हास्य व्यंग के प्रतिभावान कवि यहाँ उपस्थित हैं। तो आइए शुरू करें ये कार्यक्रम और सबसे पहले आमंत्रित करें भाई अशोक चक्रधर को।
आ रहे हैं दिल्ली निवासी अशोक चक्रधर।
मैं अपने जीवन में स्वावलंबी रहा हूँ, अपने सारे कार्य मैंने स्वयं किए हैं, अपनी पढ़ाई मैंने खुद की, अपनी नौकरी खुद पा गया, यहाँ तक कि अपनी शादी भी खुद ही कर ली। तो उसका उसके लिए मैंने अपने माता पिता को कष्ट नहीं दिया कि वो इधर उधर जाते और कुंडली लेते इधर उधर घूमते। मैंने सब कुछ अपने आप ही मिला लिया। तो उसका एक संस्मरण छोटा सा है ना, वो देखिएगा कि डरते झिझकते सहमते सकुचाते, डरते झिझकते सहमते सकुचाते हम अपने होने वाले ससुर जी के पास आए। होने वाले ससुर जी के पास आए, बहुत कुछ कहना चाहते थे पर कुछ बोल ही नहीं पाए। बहुत कुछ कहना चाहते थे पर कुछ बोल ही नहीं पाए। वे धीरज बंधाते हुए बोले, बोलो। धीरज बंधाते हुए बोले, बोलो। अरे मुंह तो खोलो। हमने कहा जी 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 ऐसा है। वे बोले कैसा है। हमने कहा जी ऐसा है। वो बोले कैसा है। हमने कहा जी 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 हम आपकी लड़की का हाथ मांगने आए हैं। बोले अच्छा, हाथ मांगने आए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा कहेगा। अबे मूर्ख, मांगना था तो पूरी लड़की मांगता, सिर्फ हाथ का क्या करेगा। एक नई कविता मैं आपको सुना दूं, उसके बाद मैं यंत्र कविता सुना दूं। इसमें मैंने एक मुहावरे का इस्तेमाल किया, जहां बात नहीं समझी जाती, मुहावरे का इस्तेमाल किया मैंने। कलकत्ते की बात कि एक मोटी सेठानी ने अपने घर बुलाया हमें।
ये औरत साहब ने किसको बुलाया तो बताओ।
कवि सम्मेलन के बाद
एक मोटी सेठानी ने
अपने घर बुलाया, चाय भी पिलाई, नाश्ता भी कराया, फिर साधिकार बोली, अधिकार के साथ बोली, ड्राइंग रूम में आइए, ड्राइंग रूम में आइए, चलिए एक कविता सुनाइए, चलिए एक कविता सुनाइए। हमने सुनाई, हमने सुनाई। वो बोली समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई। हमने कहा हम आपको कविता कहाँ सुना रहे थे, हम तो आपके आगे बीन बजा रहे थे।
बीन बजा रहे थे।
आप जानते हैं कि बीन किनके आगे बजाई जाती है।
भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छा प्रयोग किया, अच्छा
प्रयोग हमने बजा दी।
बीन बजाई,
हमने बीन बजा दी।
और अंत में एक कविता जो बड़ी ही विचित्र और विलक्षण कविता है, इतनी मैं यंत्र इतनी विचित्र कविता है कि बहुत ही विचित्र कविता है, पढ़िए। एच जी वेल्स नाम के एक विज्ञान कथा लेखक हुए हैं। उन्होंने तरह तरह के यंत्रों की कल्पना की थी, ऐसे यंत्र जिनका आविष्कार नहीं हुआ, ऐसे यंत्र जिनका अभी तक आविष्कार नहीं हुआ, इजाद नहीं हुए। जो एक यंत्र की कल्पना की कि यदि वह यंत्र आपके पास हो तो आपके सामने खड़ा हुआ आदमी, आपके सामने बैठा हुआ आदमी क्या सोच रहा है, यह आपको पता लग जाएगा। तो इसे हमारा दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कि एक दिन जब हम अपनी पत्नी के साथ बाजार जा रहे थे तो वो यंत्र हमें मिल गया। यंत्र जिससे हमें पता लग सकता था कि हमारे सामने खड़े व्यक्ति क्या सोच रहे हैं। यहां से कविता शुरू होती है कि ठोकर खाकर हमने जैसे ही यंत्र को उठाया, ठोकर खाकर हमने जैसे ही यंत्र को उठाया, मस्तक में शू शू की ध्वनि हुई, कुछ घर घराया। मस्तक में शू शू की ध्वनि हुई, कुछ घर घराया, झटके से गर्दन घुमाई, पत्नी को देखा, अब यंत्र से पत्नी की आवाज आई,
वाह।
अब यंत्र से पत्नी की आवाज आई, मैं तो भर पाई। वाह, यंत्र बता रहा है, मैं तो भर पाई। सड़क पर चलने का तरीका नहीं आता, कोई भी मैनर या सलीका नहीं आता, बीवी साथ है यह तक भूल जाते हैं और भिगमंगे नदीदों की तरह चीजें उठाते हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, बीवी साथ है यह तक भूल जाते हैं और भिगमंगे नदीदों की तरह चीजें उठाते हैं। इनसे तो वो पूना वाला इंजीनियर ही ठीक था, इनसे तो वो पूना वाला इंजीनियर ही ठीक था, जीप में बिठा के मुझे शॉपिंग कराता, इस तरह राह चलते ठोकर तो ना खाता। वाह, हमने सोचा यहां तक तो गनीमत है, लेकिन अगर रात में सोते वक्त से फिर पूना वाले की याद आई तो कैसे निभेगी। यंत्र खतरनाक है, और यह भी एक इत्तेफाक है कि हमको मिला है।
वाह,
और मिलते ही पूना वाला गुल खिला है।
अच्छा,
और मिलते ही पूना वाला गुल खिला है, और भी देखते हैं क्या क्या गुल खिलते हैं। अब जरा यार दोस्तों से मिलते हैं।
वाह,
अब जरा यार दोस्तों से मिलते हैं। तो हमने एक दोस्त का दरवाजा खटखटाया, द्वार खोला, निकला, मुस्कुराया, दिमाग में होने लगी आहट, कुछ शू शू, कुछ घरघराहट, यंत्र से आवाज आई, अकेला ही आया है, अपनी छप्पन छुरी गुलबदन को नहीं लाया है। अकेला ही आया है, अपनी छप्पन छुरी गुलबदन को नहीं लाया है। प्रकट में बोला, ओहो कमीज तो बड़ी फैंसी है, और सब ठीक है, मतलब भाभी जी कैसी।
अच्छा,
हमने कहा भाभी जी या छप्पन छुरी गुलबदन। वो बोला, होश की दवा करो श्रीमन, क्या क्षण बकते हो, भाभी जी के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो।
अच्छा,
भाभी जी के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो। तो हमने सोचा कैसा नट रहा है, अपनी सोची हुई बात से ही हट रहा है।
वाह वाह,
कैसा नट रहा है, अपनी सोची हुई बात से ही हट रहा है। सो फैसला किया कि अब से बस सुन लिया करेंगे, कोई भी अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। तो एक दिन बीए फाइनल की क्लास में एक लड़की बैठी थी खिड़की के पास में, लग रहा था हमारा लेक्चर नहीं सुन रही है, अपने मन में कुछ और ही और गुन रही है। तो यंत्र को ऑन कर हमने जो देखा, खिंच गई हृदय पर हर्ष की रेखा, यंत्र से आवाज आई, सर जी यह तो बहुत अच्छे हैं, लंबे और होते तो कितने स्मार्ट होते।
अच्छा भाई,
सर जी यह तो बहुत अच्छे हैं, लंबे और होते तो कितने स्मार्ट होते। एक लड़का जो सड़क पर जा रहा था, देखिए यंत्र है, सारी बातें सही बता देता है। एक लड़का जो सड़क पर जा रहा था, हेमा मालिनी से अवैध संबंध बना रहा था।
अच्छा,
तो हमने सोचा कि फ्रायड ने सारी बातें ठीक ही कही हैं, फ्रायड ने सारी बातें ठीक ही कही हैं कि इंसान की खोपड़ी में सेक्स के अलावा कुछ नहीं है।
वाह,
कुछ बातें तो इतनी घिनौनी है जिन्हें बतलाने में भाषा भी बौनी।
वाह,
कुछ बातें तो इतनी घिनौनी है जिन्हें बतलाने में भाषा भी बोनी है। खैर साहब, इस यंत्र ने बड़े बड़े गुल खिलाए हैं, कभी अमृत तो कभी जहर के घूंट पिलाए हैं। वह जो लिपस्टिक और पाउडर में पुती हुई लड़की है, मुझे मालूम है इसके घर में कितनी कड़की है।
वाह,
मुझे मालूम है इसके घर में कितनी कड़की है। और ये जो पनवाड़ी है, मुझे पता है कि मेरे पान में इसकी बीवी की झूठी सुपारी।
वाह
वाह, मुझे पता है कि मेरे पान में इसकी बीवी की झूठी सुपारी है। आज भी वो यंत्र हम साथ लेके आए, हमें पता है कि शैल जी देर से क्यों आए, क्या करके आए।
अच्छा,
तो बंधुओं, इस यंत्र से हर तरह का भ्रम गया। और भाई सुरेंद्र शर्मा सोच रहे हैं कि अरे ये तो जम गया।
भाई अशोक चक्रधर अभी आपके सामने अपनी बहुचर्चित यंत्र वाली रचना प्रस्तुत कर रहे थे। अब मैं मनहर जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने ढंग से भाई ओम प्रकाश आदित्य को यहाँ आमंत्रित करें।
तो एक रचना इच्छा पर, अपनी इच्छा पर भाई जी आदित्य जी जरूर सुनाएंगे। एक बात मैं इसलिए उनकी जानकारी के लिए कह रहा हूँ, आदित्य जी हमारे यहाँ तो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, लेकिन एक ऐसे देश की घटना मुझे याद आ रही है जहां वार मिनिस्टर होते हैं, युद्ध मंत्री बनाए जाते हैं। तो एक आदमी ने कहा वो वार मिनिस्टर हो गए हैं, युद्ध मंत्री हो गए, अब युद्ध नहीं होगा। तो दूसरे पूछा भाई क्या बात है, बोले यही आदमी जब फूड मिनिस्टर थे तो फूड नहीं था। जिस चीज के मिनिस्टर होते हैं वो चीज गायब हो जाती है, ये बात अलग थी। अब एक दिल्ली में भाई ओम प्रकाश आदित्य रहते हैं, मुझे मालूम है ये जिस क्षेत्र में रहते हैं काफी अच्छी जगह इनके पास, इन्होंने गाय भैंस भी पाल रखी है, एक भैंस भी है इनके पास। तो एक दिन एक आदमी इनके पास मित्र आया, बोलो आदित्य जी आपकी भैंस बीमार हो गई थी तब आपने क्या दिया था? मेरी भैंस बीमार हो गई है तो आप अपनी भैंस को आपने क्या दिया था वो दवाई बताइए, मेरी भी भैंस बीमार हो गई है। आदित्य ने कहा भाई मैंने अपनी भैंस को गुड़ और तिल का तेल खिलाया था। इसके मित्र ने कहा ठीक है मैं समझ गया, चला आया। दूसरे दिन सुबह ही इनका मित्र पहुंचा, बोले आदित्य जी यार मैंने आपके कहने से रात को अपनी भैंस को गुड़ और तिल का तेल खिलाया तो मेरी भैंस तो मर गई। आदित्य बोले मर तो मेरी भी गई थी भाई, तुमने परिणाम कहां पूछा? अब वही बात है कि ये हर चीज को अपने ढंग से कहते हैं, परिणाम क्या हो इसमें कभी ध्यान नहीं देते। आ रहे हैं ओम प्रकाश आदित्य।
देखिए राजस्थानी में मैं कविता नहीं लिखता हूँ, लेकिन मैं हरियाणा का वैसे रहने वाला हूँ, उसमें हरियाणवी का टच है। यानी आप जानते हैं कि हरियाणा हर काम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सबसे पहले तो जिसका भाई मनोहर ने जिक्र किया, हरियाणा अच्छी किस्म के गायों के लिए सांडों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हाँ वो सांड को भूल गए, उनको भैंस और गायें याद रही,
वो तो आपको देख के लग ही रहा है जरूर प्रसिद्ध होगा।
हरियाणा में आप जानते हैं मंत्री भी होंगे तो हमारे बंसीलाल जैसे पैदा होंगे, स्वामी पहलवान होंगे चमकी राम जैसे होंगे, खिलाड़ी भी होंगे तो कपिल देव जैसे होंगे। तो हर बात में हरियाणा ऐसा, हरियाणा का आदमी मोहब्बत करेगा तो भी अलग ही ढंग से करेगा। हरियाणा का, हरियाणा के आदमी का रोमांस भी अजीब ही होगा, तो हरियाणा का आदमी किसी सुंदरता को देखकर क्या उपमाएं देगा उसको कैसा लगेगा। बड़ी एक छोटी सी रचना है, इसमें हरियाणवी के दो तीन शब्द आएंगे, कठिनाई नहीं होगी समझने में। ये बिजली कड़की है या कोई लड़की है कि ये बिजली कड़की है या कोई लड़की है, आंखों में काजल है कंधों पर बादल है, मस्ती में चलती है मदिरा सी ढलती है, चढ़ती जवानी है शीशे पर पानी है, थोड़ी पर तिल है रे ये मेरा दिल है रे, थोड़ी पर तिल है रे ये मेरा दिल है रे, गन्ने की पोरी है ये गागर कोरी है, मैं इसको पा जाऊं गंगा ना आ जाऊं, गन्ने की पोरी है ये गागर कोरी है, मैं इसको पा जाऊं गंगा ना आ जाऊं, चाहे मैं मिट जाऊं चाहे मैं पिट जाऊं, मैं इससे बोलूंगा अंतरपट खोलूंगा, सुनती जा गोरी है अलबेली छोरी है, नजरे ही नायत कर कुछ तो ही मायत कर, तू मेरी शामत है जिंदा कयामत है, किस्मत का मारा हूँ टूटा सितारा हूँ, ऐसा आवारा हूँ अब तक कहाँ वारा हूँ, ऐसा आवारा हूँ अब तक कहाँ वारा हूँ, तेरा दीवाना हूँ जलता परवाना हूँ, मेरा दिल लेती जा अपना दिल देती जा, वो बोली बाबू सुन दिल पे रख काबू सुन, वरना चित जागा तू जाने कित जागा तू, मैं सू हरियाणे की बस मैं ना आने की, मैं सू हरियाणे की बस मैं ना आने की, मैं बोला झूमूंगा तेरे पग चूमूंगा, गुस्से में आकर वो गुस्सा दिखाकर वो बोली झूमा दूंगी लट्टू घुमा दूंगी, गुस्से में आकर वो गुस्सा दिखाकर वो बोली झूमा दूंगी लट्टू घुमा दूंगी, दोबारा फिर मैंने खुजलाया सिर मैंने, बेशक झूमा दे तू लट्टू घुमा दे तू, पिट पिट कर जूझूंगा तेरे पग पूजूंगा, जब तक मुंह खोले वो मुंह से कुछ बोले वो, चाचा हर कुशल चंद उखल में मूसल चंद, आ पहुंचे पीछे से पुलिया के नीचे से, जड़कर तमाचा जी यो बोले चाचा जी, पत्नी तो घर में है तू किस चक्कर में है, पत्नी तो घर में है तू किस चक्कर में है, खाकर तमाचा जी मैं बोला चाचा जी, मैं सब्जी लाता था रस्ते में जाता था, ये मिस बरूचे थी ये तुमको पूछे थी, मैं सब्जी लाता था रस्ते में जाता था, ये मिस बरूचे थी ये तुमको पूछे थी, कि मैं सब्जी लाता था रस्ते में जाता था, ये मिस बरूचे थी ये तुमको पूछे थी, वो बोली बक कैसे यो मरने तक कैसे, वो बोली बक्के से यो मन ने तक्के से, निष्ठुर ने मारा रे ताना करारा रे, तू तो न्यू कहे था भावा में बह था, ऐसा आवारा हूँ अब तक कहाँ वारा हूँ, तू तो न्यू कहे था भावा में बह था, ऐसा आवारा हूँ अब तक कहाँ वारा हूँ, तू तो दीवाना था जलता परवाना था, अरे तू तो दीवाना था जलता परवाना था, घर में जो सम्मा से वा तेरी अम्मा से।
हरियाणवी भाषा में कविता सुनाते हुए आपसे साक्षात्कार कर रहे थे भाई ओम प्रकाश आदित्य। दोस्तों स्वरों और भावों का यही संगम बना रहे, इसलिए मैं इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे देश के सुमधुर गीतकार भाई भारत भूषण को। आइए भारत भूषण जी।
दशहरा और राम रावण प्रसंग को सोचते हुए इस कविता पर विचार करें, एक नया दृष्टिकोण आपको दे रहा हूं इस बात को देखने समझने के लिए। कविता इस प्रकार है। न जन्म लेता न जन्म लेता हूं अगर कहीं मैं, पाप कह रहा है, न जन्म लेता हूं अगर कहीं मैं, धरा बनी ये मसान होती। न जन्म लेता हूं अगर कहीं मैं, धरा बनी ये मसान होती। न मंदिरों में मृदंग बजते, न मस्जिदों में अजान होती। न जन्म लेता हूं अगर कहीं मैं, धरा बनी ये मसान होती। न जन्म लेता लिए सुमिरनी माला, लिए सुमिरनी डरे हुए से, बुला रहे हैं मुझे पुजेरी, जला रहे हैं पवित्र दीवे, न राह मेरी रहे अंधेरी। हजार सजदे करें नमाजी, न किंतु मेरा जलाल घटता, पनाह मेरी यही शिवाला, महान गिरजा सराय मेरी, पनाह मेरी यही शिवाला, महान गिरजा सराय मेरी। मुझे मिटाकर न धर्म रहता, मुझे मिटाकर न धर्म रहता, न आरती में कपूर जलता। मुझे मिटाकर न धर्म रहता, न आरती में कपूर जलता, न पर्व पर ये नहान होता, न ये बुतों की दुकान होती। न जन्म लेता अगर कहीं मैं, धरा बनी ये मसान होती। न जन्म लेता मुझे सुलाते रहे मसीहा, सारे महापुरुष इसी के लिए पैदा हुए। मुझे सुलाते रहे मसीहा, मुझे दबाने रसूल आए, कभी सुनी मोहनी मुरलिया, कभी अयोध्या बजे बधाए। मुझे दुआ दो बुला रहा हूँ, हजार गौतम हजार गांधी। मुझे दुआ दो बुला रहा हूँ, हजार गौतम हजार गांधी। बना दिए देवता अनेकों, मुझे मगर तुम न पूज पाए। बना दिए देवता अनेकों, मुझे मगर तुम न पूज पाए। मुझे रुला कर न सृष्टि हंसती, न सूर तुलसी कबीर आते, न क्रॉस का ये निशान होता, न ये आयते पुराण होती। न जन्म लेता अगर कहीं मैं, धरा बनी ये मसान होती। न जन्म लेता न वेद मुझसे बचे हुए हैं, न बाइबिल की रही कड़ी है, पुराण गीता हदीस काफे कभी जरा भी न
नहीं गुम हुए कहाँ है अजय मेरा निशान उड़ता बिना झुकी पुर्जियां खड़ी हैं न चूमता मैं अधर जन्म के सभी अधर फिर खामोश होते न सात ऐसा जहान होता न सात ऐसी जबान होती न जन्म लेता अगर कहीं मैं खरा बनी ये मसान होती न जन्म लेता
अंतिम पद है ध्यान से सुने
बुरा बता ले मुझे मौलवी बुरा बता ले मुझे मौलवी कि दे पुरोहित हजार गाली सभी चितेरे
चित्रकार
सभी चितेरे शक्ल बना दे बहुत भयानक कुरूप काली मगर यही जब मिले अकेले
यही सब लोग
मगर यही जब मिले अकेले सवाल पूछो यही कहेंगे कि पाप ही जिंदगी हमारी मगर यही जब मिले अकेले सवाल पूछो यही कहेंगे कि पाप ही जिंदगी हमारी वही ईद है वही दिवाली न सींचता मैं अगर जड़ों को न सींचता मैं अगर जड़ों को कभी जहां में न पुण्य फलता न रूप का यूं बखान होता न प्यास इतनी जवान होती न जन्म लेता अगर कहीं मैं धरा बनी ये मसान होती न मंदिरों में मृदंग बजते न मस्जिदों में अजान होती न जन्म
आपने अभी भाई भारत भूषण से उनकी यह सुंदर रचना सुनी। दोस्तों, गीतों का यह सफर यूं ही चले और शायद इस सफर को एक नई दिशा मिल सके, इसलिए मैं अपना एक गीत आपके समक्ष रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सुलझा जीवन जो उलझा था जटिल पहेली सा, सुलझा जीवन जो उलझा था जटिल पहेली सा, मुक्त हो गया आकाशी मन खुली हथेली सा। भोर किरण ने भीतर झांका बंद किवारों के, भोर किरण ने भीतर झांका बंद किवारों के, बांध बींधते गए हमें मन चले इशारों के। भोर किरण ने भीतर झांका बंद किवारों के, बांध बींधते गए हमें मन चले इशारों के। मौसम स्वप्निल नयन खोलता नई नवेली सा, मुक्त हो गया आकाशी मन खुली हथेली सा। सुलझा जीवन जो उलझा था जटिल पहेली सा, मुक्त हो गया आकाशी मन खुली हथेली सा। अंतरा देखिएगा, घर आंगन अमराई बगिया ताल सिवार कुआं, घर आंगन अमराई बगिया ताल सिवार कुआं, शाम ढले दीपक चूल्हे से उठता हुआ धुआं। घर आंगन अमराई बगिया ताल सिवार कुआं, शाम ढले दीपक चूल्हे से उठता हुआ धुआं। महक उठा सूना मन आंगन नई चमेली सा, मुक्त हो गया आकाशी मन खुली हथेली सा। सुलझा जीवन जो उलझा था जटिल पहेली सा, मुक्त हो गया आकाशी मन खुली हथेली सा। धन्यवाद।